नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बृहस्पतिवार को हुए विधानसभा चुनाव में से किसी भी केंद्र पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई है। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 44,000 से अधिक मतदान केंद्रों में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा और कहीं से भी पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई है, इसलिए किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान की आवश्यकता नहीं है। पहले चरण में राज्य के 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ था, इसमें रिकॉर्ड 92% से अधिक वोट पड़े थे। उधर तमिलनाडु में भी सभी केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा, इसलिए दोबारा मतदान कराने का कोई कारण नहीं है। राज्य में विधानसभा की 234 सीटों के लिए 85% से अधिक मतदान हुआ था। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। ओडिशा विधानसभा में भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका पर विचार विमर्श के लिए 30 अप्रैल को एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इस दौरान शासन और नीति निर्माण में महिलाओं के योगदान, चुनौतियों और अवसरों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इसमें समावेशी राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। ये सत्र विशेषकर महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा के बीच आयोजित हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों से दूर रहने को कहा है। वे आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे।
I am humbly requesting all the youngsters of this country, keep away from drugs, keep away from tobacco. Let us also remember those who are currently battling their disease cancer. May they find strength by knowing your stories, the survivors. As we move forward, let us pledge to create a world where no one fights cancer alone. We all will be with them. Their awareness replaces the fear and their hope becomes the stronger than despair. Say, stay strong, stay hopeful and keep inspiring the world with all your courage inside.
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे बैंक के कारोबार पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लग गई है। रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 में बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2024 में भी बैंक पर अतिरिक्त व्यावसायिक प्रतिबंध के अंतर्गत मौजूदा ग्राहक खातों और प्रीपेड उपकरणों में किसी भी प्रकार के जमा, क्रेडिट और टॉपअप पर रोक लगा दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय राजधानी क्षेत्र में रहेजा डेवलपर्स उनके डायरेक्टरों और उसके सहयोगियों से जुड़े 7 फ्लैटों पर तलाश ले रहा है। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार ये तलाशी मकान खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी और रहेजा रेवंता प्रोजेक्ट्स के फ्लैटों की डिलीवरी न करने के मामले में चलाई जा रही है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेला बेरबॉक से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने शांति और सुरक्षा, विकास, बहुपक्षवाद और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार जनगणना 2027 के लिए देशभर में टोल फ्री नंबर 1855 सक्रिय हो गया है। इस हेल्पलाइन से मकान सूचीकरण और आवास जनगणना संबंधी मार्गदर्शन लिया जा सकेगा। ये सूचना क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच बेहतर रेल संपर्क और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 30 अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। आधुनिक सुविधाओं वाली इस ट्रेन से पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष हाई स्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.10 जबकि इंटरमीडिएट का 85.11% रहा। केरलम के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु और नारायण गुरुकुलम के प्रमुख गुरु मुनि नारायण प्रसाद का आज सुबह तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। सिविल इंजीनियर रहे नारायण 1968 में गुरुकुलम में शामिल हुए। उन्हें पद्मश्री और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।